نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يتبع أكثرهم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا آج بیٹھنے کا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے شوہر بیوی کے جھگڑے اس کے اسباب اور اس کا علاج کیا آپ اس ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کا ہیڈ ٹاپک ہے تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کریں گے کہ شوہر اور بیوی کے عمومی طور پر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں ہم اس کے تھوڑے سے اسباب دیکھیں گے پھر اسباب کے بعد ان شاء اللہ ساتھ ہی ساتھ ان کا علاج دیکھیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شر یا جھگڑا یا فساد پسند نہیں ہے ان اللہ لا یحب الفساد فساد نہیں پسند اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا تب تک ہم باہر بھی پرسکون نہیں ہوں گے اور کسی کی بات بڑی اچھی لگی میں نے ایک جگہ شیئر بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں جب بہت چھوٹا تھا بہت ہی چھوٹا تھا تو میں کہتا تھا کہ ساری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے میں نے تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے لگا کہ یہ بہت مشکل جاب ہے آئی کینٹ تو پھر میں نے اس کے بعد سوچا کہ چلیں ساری دنیا کو تو میں ٹھیک نہیں کر سکتا تو مجھے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو لگا کہ یہ بھی بہت مشکل ہے سارے ملک کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا شعور بھی آنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے شہر کے لوگوں کو صرف ٹھیک کر لیتا ہوں اور کچھ اور سال کے بعد سمجھ آیا کہ یہ بھی نا حاصل ہونے والی چیز ہے تو مجھے جس وقت اس حقیقت کی سمجھ آئی کہ نہ میں دنیا کو ٹھیک کر سکتا ہوں نہ میں ملک کو ٹھیک کر سکتا ہوں نہ میں شہر کو ٹھیک کر سکتا ہوں مجھے خود کو ٹھیک کرنا چاہیے میں ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا بٹ اس وقت اٹ واز ٹو لیٹ یہ بہت دیر ہو چکی تھی اس چیز پہ اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی جگہ کا سکون اور اطمینان کب ہوتا ہے جب ہر بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرے دوسرے کی خوبیوں کو دیکھے اور اپنی خامیوں کو دیکھے خاص طور پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان کچھ زیادہ ہی جھگڑالو ہو گئے ٹانگا آگے چلا گیا تو جھگڑا رکشہ آگے آ گیا تو جھگڑا سبزی والے سے جھگڑا کوئی گوشت خرید رہا ہے تو اس سے جھگڑا تم نے ہڈی دے دی تم نے چربی ڈال دی کوئی چیز لے رہا ہے تو اس پہ جھگڑا دینے والا جھگڑا دکان ہر طرف ایسے لگتا ہے جیسے ہر بندہ دوسرے سے بدگمان ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا کم وزن دوسرے کے ساتھ بدگمانی سے بچو یعنی ایسے لگتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ ہر وقت دوسرے کی غلطیاں ٹٹولنے پہ لگا ہوا ہے اور لیگ پلنگ پہ لگا ہوا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس دیکھنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک باپ تھا تو وہ بیٹھ کے کہیں کام کر رہا تھا تو اس کا بیٹا بار بار اس کے پاس آ کے کہہ رہا تھا کہ ابو میں بور ہو رہا ہوں مجھے کوئی کام دیں اب کیا ہوا کہ وہ بچے کو بار بار کوئی کام دیتا وہ اسمارٹ بچہ تھا تھوڑی دیر میں وہ کام کر کے آتا پھر باپ کو ڈسٹرب کرتا باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے بزی کروں تو باپ نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک اخبار رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے جیسے گلوب بنا ہوا ہے اور اس میں مختلف ملک ہیں تو اس نے کیا کیا کہ اس اخبار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور بیٹے کو وہ کاغذ کے ٹکڑے پکڑائے اور کہا جاؤ یہ نقشہ دوبارہ بنا کر لاؤ اس کو جوڑ کے لاؤ اس کا خیال تھا کہ یہ کہاں جوڑے گا آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک اور بیچ میں ایشیا کو اور عرب کنٹریز کو تو میں پرسکون ہو کے کام کر لوں گا لیکن باپ کی امید کے برخلاف چند منٹ گزرے تو بچہ وہ پورا نقشہ جوڑ کے لے آیا اس نے اس اخبار کے ٹکڑوں کو جوڑا ٹیپ کے ساتھ لے آ گیا تو ابو میں نے نقشہ ٹھیک کر دیا تو باپ بڑا حیران ہوا کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے یہ کیسے کر دیا میرا تو خیال تھا کہ آپ بہت دیر لگائیں گے اس کے اندر تو اس نے کہا ابو بہت آسان ہے कैसे किया? कहने लगा, जब आप अखबार फाड़ रहे थे ना, तो मैंने पीछे खड़े होकर देख लिया कि उसके पीछे वाली तस्वीर एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। तो मैंने पीछे वाले हिस्से से जाके आदमी की जब तस्वीर जोड़ी तो नक्शा ठीक हो गया। यही है असल में सारी बातों का खुलासा। इंसान की इस्लाह, दुनिया की इस्लाह। हम सब चूंकि दुनिया में अमूमन एक ही माहौल में रहते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा फ़र्क कर नहीं पाते। लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जैसे मैं अपने आप को इसमें खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से मिलने का और सफ़र का मौका मिलता है, तो मैं उन सब मरहलों में से जब निकल के अपने मुल्क में आती हूँ और अपनों में आते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि हम सब के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत, अपने मुल्क की, इसको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। हम चांद पे भी चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान सबसे अच्छा है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जो किरदार है ना, वो बिगड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, यकीन कीजिए। सिंपल, प्लेन, क्लियर, कुछ उसमें फैंसी चीज़ें नहीं। आपके क्लिफ्टन और डिफेंस के घर जैसा तो एक घर भी अमेरिका में नहीं शायद होगा, सिर्फ मिसाल दे रही हूँ। और जितने बड़े आपके घर हैं, यूके में एक एक घर में से छः छः घर निकलते हैं, जिसको आप कमरा कहते हैं उसके अंदर घर निकलते हैं। ये सच्ची बात है, ये हकीकत की बात है। रात को भी हम जहाँ ठहरे हुए हैं, माशाल्लाह अपने रिलेटिव्स हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हंस रहे थे, कहने लगे कि क्या फील हो रहा है। मैंने कहा मैं ये सोच रही हूँ, छत को दिखा कर, सारा टॉयलेट जो भी चीज़ थी, मैं सोच रही थी कि यूके में इस कमरा और बाथरूम जो हमें मिला हुआ है जिस साइज़ का, इसके अंदर कम अज़ कम 3 हिबल निकल सकते, 3 स्टूडियो फ्लैट निकलेंगे। तो मैं हंस रही थी कि आपके मामू ने कितना पैसा ज़ाया किया हुआ इतने बड़े कमरे में, फिर हम रह दो ही रहे हैं। लेकिन यहाँ जगह है ना, तो आप रख लेते हैं। उतनी कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, उतनी बिजली का बिल, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन वी कैन अफोर्ड इट। बाहर के मुल्कों में तो सबूर भी नहीं कर सकते। ये तो बस दुआ करें वीज़ा ना ही मिले, तो आपके दिल में इज्जत बनी रहे अमेरिका, कैनेडा और लंदन और उसके ख्वाब देखें। मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को कि शुक्र है लोगों को वीज़ा नहीं मिलते, तो हमारी इज्जत बनी हुई है। जनरल बात कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत सारी खैर है, बट जो चीज़ है वो क्या है कि हमारे मुल्क में इंसानों की तरबियत नहीं हुई। मैं आते जाते जहाँ भी अभी भी आ रहे थे तो रश में फंसे हुए इधर, तो मैं पूरा वक्त यही सोच रही थी कि ये कैसे होगा। तो वो हमारा जो ड्राइवर था जो साथ हमारे, तो वो स्कर्दू से था बाबा, तो हम उससे रास्ते में बातें पूछते रहे। और मुझे बचपन से लव स्कर्दू बहुत अट्रैक्ट करता है, आपको भी करता होगा। तो मैंने कहा बाबा हमें अपने गाँव ले जाओ ना। बाजी वहाँ जाके क्या करेगा, हाथ पाँव फट जाएगा सर्दी से, यानी वहाँ बर्फ़ होती है। मैंने कहा जहाँ से हम आए हैं वहाँ नहीं फटे तो यहाँ भी नहीं फटेंगे। तो हंस रहा था, कहने का नहीं, वहां का सर्दी असली सर्दी है, हमारे सर्दी में मट्टी के घर है। यानी कहने का मतलब ये कि वो, मैंने कहा बाबा जी हमारा मुल्क कब ठीक होगा, कहता बाजी ये ठीक नहीं होगा। उसने इतने यकीन से कहा कि हम दोनों हंस पड़े कि वाकई ये सच है। लेकिन यकीन करें कि बहुत आसान है, सिर्फ एक बात समझ आ जाए ना कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो अगर हम बाहर की दुनिया पे ये कमेंट्स लेकर घर की दुनिया पे चलें, तो हकीकत है कि हर इंसान की तबीयत दूसरे से फ़र्क होती है। आज ख़ास तौर पे शौहर बीवी के ताल्लुक को डिस्कस करना चाहूँगी। आप देखिए कि जो झगड़ों की बहुत सारी वजूहत है, अब इसमें आप इसको बाद में क्लासिफाई कर सकते हैं कि शादी के शुरू के दिन का ताल्लुक, शादी के साल बाद का, या 10 साल बाद का, या बुढ़ापे का ताल्लुक, ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, फ़र्क होता है दोनों सब में। लेकिन मैं इस वक्त अमूमी बात करूंगी, क्योंकि शुरू में तो वो थोड़ा सा वक्त गुजर ही जाता है रोमांटिसाइज होते हुए और कुछ अरसे के में ख्वाबों में गुजर जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शौहर बीवी की जो नेचुरल लाइफ शुरू होती है वो शादी के 2-3 साल बाद शुरू होती है, जब एक आधा बच्चा भी आ चुका था। यानी जब कहते हैं ना कि हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई है, शुरू में तो एक बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी दौर होता है ना, लड़की नई नई अपना घर छोड़ के आई है, लड़के को जिंदगी में लाना है। जिस घर ने टूटना होता है मैं देखती हूँ वो शुरू में 1-2 साल में टूट जाता है, और अब तो अल्लाह रहम करे इतना फ्रेजल ताल्लुक हो गया, इतना ये ताल्लुक है कि शादी के बाद कान ही लगे रहते हैं कि कोई सुनाए कि सब ठीक चल रहा है। 2 महीने बाद तलाक, 3 बाद तलाक, यानी इस वक्त मुस्लिम तलाक की रेशे, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, यहाँ का तो मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ जितने लोगों से बात की है वो कहते हैं कि हालात यहाँ भी बड़े ख़राब है, क्योंकि टॉलरेंस नहीं रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अमूमी तौर पे जो औरत और मर्द के झगड़े होते हैं उसके असबाब में पहला सबब, यानी ये चीज़ अब मैं अपने आप को भी कहूँगी और आपको भी। अब आप में कुछ बच्चियाँ हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम है सुनने का, क्योंकि झगड़े करके ये मसला समझना और ज़िंदगी में कई किस्म के नाखुशगवार तजुर्बात से गुजरना मुश्किल है। और अगर अपनी ज़िंदगी के शुरू करने से पहले ये बात समझ आ जाए तो हम फ़र्क ले सकते हैं। तो मेरी नज़र में अल्लाह ताला नौस्ती बैस के सबसे पहली बुनियादी वजह यानी बड़े गौर से सुनिएगा, यानी औरत और मर्द के मिजाज का फर्क है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते, यानी हम औरतें हैं तो मैं बार बार आपको ही कहूंगी और अपने आप को ही कहूंगी, क्योंकि मैं मर्दों को कैसे कहूं कि वो नहीं औरतों को समझते। लेकिन ये बहुत बड़ी वजह है कि औरत के मिजाज को और मर्द के मिजाज को, दोनों में जो फर्क है ना, इसको शौहर बीवी की और बीवी शौहर की नहीं समझता। ये जो आज हमारे यहाँ एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ फिल्मों और नावलों से रोमांटिसाइज किया गया जी, कि हमारे अंदर बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। पहले दौर में अंडरस्टैंडिंग का मफहूम कुछ और होता था। जब हम सब अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में थे तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता था कि दोनों में मोहब्बत हो गई, या जिसको आप लव मैरिज कहते हैं, उसके साथ ही क्या एक अजीब सा तसव्वुर आता था ना। आज जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल लड़की लड़के का दिया है और माशरे ने दिया है, वो क्या कहते हैं कि अगर दोपहर को मैंने बर्तन धोए हैं तो शाम को तुम धोगे, अगर एक वक्त में बच्चे का पैंपर मैंने चेंज किया तो दूसरे पे तुम करोगे। यानी औरत मर्द को एक दूसरी औरत देखना चाहती है, और मर्द औरत पर इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता है, उसको एक दूसरा मर्द बना के पेश करता है। और फ़र्क ये है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट है डिफरेंट जगहों पे, जैसे भी हो, दुख सुख के नाम पे। अब दुख सुख का क्या मतलब है कि किसी के घर में कोई मसला है, कोई भी रिश्ते का मसला है, या शादी का हो गई है, या एनी वेयर जो भी है, तो खुद नहीं समझ आती ना बाज़ुकात। बाज़ दफ़ा जब सर पे पड़ती है तो उस वक्त अकल ही चली जाती है। तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जब तुम ना कर सको तो हकम मिन अहली हा व हकम मिन अहलहू, दोनों तरफ से लोग किसी तीसरे को डालें और उससे बात रहकर ये सब कुछ लेकर चले। तो उसकी बुनियाद पे जब हम किसी लोग के साथ शेयर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त ही डिफरेंट केसेस हमारे साथ डिस्कस हो रहे होते हैं, फ़ोन पे कह लें या इन पर्सन। मैंने उस सारी चीज़ों में जो खुद सीखा है, यानी ये जो मैं आपको बताऊंगी यकीन करें जी, मैंने लोगों से सीखा है, लोगों के ताल्लुकात को देखकर सीखा है। क्योंकि इंसान है ना, तो इंसान इंसानों से सीखेगा। आप कहें कि कोई किताब रेफर कर दें कि उससे हमें पता चल जाए कि जी ये कैसे सब कुछ होगा और होएगा, तो वो किताबें तो हम सब ने पढ़ी हुई हैं, हम सबको पता, अच्छी बीवी कौन होती है, अच्छा मर्द कौन होता है, उसकी सिफात भी पता है। हमने अपनी माओं को भी देखा, नानियों को भी देखा, दादियों को देखा, अपनी सासों को भी देखा, ये सब तो हम देखते आए। लेकिन जो हकीकी चीज़ है आज के दौर में, वो क्या है कि औरत को मर्द और मर्द को औरत बनाने की कोशिश की गई है। यदि मैं आपको एक सपोज्ड कहानी सुनाती हूँ, सच है लेकिन कहाँ की आपको ना पता है ना कुछ ना कहानी। हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसमें पहले बीवी की तरफ से हमारे पास बात आई, उसकी किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि जी ये मेरी दोस्त का मसला है और उसका मियाँ बहुत बुरा है और घर आते ये वो, यानी जो आन बान शान जो कुछ हो सकती है वो सब कुछ होता है, उसका फ़ोन बंद करा देता है और कुछ बहुत सख्त, घर टूटने के करीब है। तो मुझे हमेशा ही वही चीज़ अच्छी लगती है जो कि मेरा ख्याल है कि बेस्ट है कि कम्युनिकेशन इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। मैंने उन्हें कहा कि देखिए अगर आपका अपना ये इशू है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपकी दोस्त का इशू है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप अपनी दोस्त से कहें कि खुद बात करें, क्योंकि आप उसकी दोस्त हैं, उसने आपको जो कहना है आपको वो ठीक लगना है। और वल्लाह ही बात ज़ाहिर है, लोग सुनाने से पहले बोलते ही रहते हैं, वो अपनी पूरी बात सुना भी चुकी थी। और मैं अपने दिल की बात आपको बताती हूँ कि जब वो अपनी दोस्त का मुकदमा लड़ रही थी ना, कहने कि मुझे उसकी तरफ से कन्विंस करी थी, तो इंसान थी मैं भी, मेरे भी जहन में फीलिंग आती, तो मेरे जहन में लग रहा था कि मजलूम तरीन औरत, दुखी तरीन औरत, और शौहर इसका कट्टर और अक्खड़ जालिम, और इस किस्म का मैं जा रहा था। खैर मैंने उन्हें कहा कि आप उन्हें कहें कि वो खुद बात करें, कहने की ठीक है। हर एक आध दिन बाद उनकी अपना फ़ोन आ गया, जो उनकी दोस्त के थ्रू हम सुन चुके थे वही उसने मुझे दोबारा कुछ और डिटेल्स के साथ सुनाया। मैंने उसकी सारी बात सुनी, घंटा बोलता रहे, कोई तो मैं बोलती नहीं बीच में, कोई पूछे अच्छा आप सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं, क्योंकि पहले मुझे तो पता चले। उसकी सारी बात को मैंने जो फिगर आउट किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बीमारी की वजह मुझे समझ आ गई। मैंने कहा कि आपकी बात अब सुन ली है, अब ये बताइए कि आपको जो भी एतराजात हैं और जो सारे मसाइल हैं, इन सारों को सुनने और उसमें आपको कोई हल देने से पहले आपके हस्बैंड से भी बात की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम का हुक्म है कि जब भी दो लोगों का मामला आप लोग डिस्कस करें तो उसके बीच में दोनों की बात सुने, फिर ही बात होगी ना, तो आप अपने हस्बैंड से बात करा दें। कहने लगी ठीक है। अच्छा उसने, मैंने बातें जब उनसे कुछ पूछी आपके हस्बैंड आपको कैसे बुलाते हैं, तो उसने कहा वो आप कहते हैं मुझे, जी करते हैं, यानी इज्जत से बुलाते हैं। मुझे समझ आया कि ये कोई गैर महज़ब शख्स नहीं है। खैर किस्सा मुख्तसर, तो जब किसी के मर्द ने बात करनी हो तो मैं खुद नहीं करती, फिर मेरे हस्बैंड बीच में होते हैं, उनसे बात हो रही होती है, बीच में सुन के दोनों जैसे भी हम उनकी मदद कर सकें। मैंने कहा कि क्या आपके हस्बैंड ये काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, इसको काउंसलिंग कहते हैं वेस्ट में लोग ना। वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि पूछ लेते हैं। तो जब उसने पूछा तो उसने कहा हाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इससे भी मेरे जहन में एकदम सोच बदली कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ इस हालात पे पहुंच चुका है कि इनका डिवोर्स का मैटर है, लेकिन वो अपनी उसी बीवी के कहने पे एक तीसरे बंदे से काउंसलिंग कर रहा है। तो कोई बुरा इंसान तो नहीं होगा ना, कुछ स्टबन तो नहीं होगा ना। और इसका अंदर कि वो कोई ऐसा भी नहीं है कि इसे जान छुड़ाना चाहता है। उसने कहा कि वो बड़ी खुशी से करेंगे, फिर नमाजी है, नमाजी है, 5 वक्त ये है वो है। खैर, किस्सा मुख्तसर, टाइम सेट हो गया हमारा। अब उसमें भी सूरत हाल यही थी कि उनके शौहर को हमने मौका दिया कि क्या आप अपनी बीवी से अलग कुछ बात करना चाहते हैं, यानी फिर आप दोनों की इकट्ठे करेंगे। उसने कहा नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, जो बात मैं करूँगा मैं सामने करूँगा। बिलीव मी, मैं कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने उस औरत के मर्द से बात कर ली, वरना देखिए ना, हम लोग तो चलते रह जाते, दूसरों को ऐसे ही मशवरे दे रहे होते हैं। उसने कहा कि मेरे ऊपर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जी ये इसका घर आते ही गुस्सा करता है या नाराज़ हो जाता है, ये वो है, और फ़ोन इसका बंद करता है। कहने लगा कि ये औरत दिन में कम अज़ कम 8 से 9 घंटे फ़ोन यूज़ करती है। जैसे अपनी जॉब के उसने आवर्स बताए कि मैं जब घर में से जाता हूँ तो इतने बजे जाता हूँ, वापस आता हूँ, टोटल 10 को घंटे थे। आपको भी पता है फोन्स में हिस्ट्री होती है, आप किसी भी पढ़े लिखे मैकेनिक के पास चले जाएं, वो आपको बता सकता है सुबह से इस पे कितनी कॉल्स हुई हैं, कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग है, कितने टेक्स्ट मैसेज हुए हैं। ये हम सब के फोन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे एक कंप्यूटर में हर चीज़ आती है वो इसमें भी आती है। कहने लगा कि इसको बातें करने की आदत है, और फोन पे ये कितनी बातें किससे करती है। अब जो एक औरत दिन में शौहर की 10 घंटे की गैर मौजूदगी में 8 घंटे मुसलसल फोन पर रहेगी, तो क्या वो घर की सफाई करेगी, बच्चों को देखेगी? कहता है इसको किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जब मेरे आने का वक्त होता है तो फिर ये जल्दी जल्दी में खाना पकाना ये वो, जिसकी वजह से मुझे एहसास होता है, तो मैं आते ही जो इसका फोन बंद करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि तुम इतना तो पहले यूज कर चुकी हो। वो कहने लगा कि हैरत की बात ये है कि ये इतना बोलती कैसे है, फोन की तो मुझे दिखती है रिकॉर्डिंग, इसकी क्यों नहीं समझ आती? अब वो बीवी सुन रही थी और उसने कहा कि पूछ ले इनसे, मैं इनसे छुपा के नहीं कर रहा, और ये सच है। और फिर उसने कहा कि हमारी जब भी लड़ाई हुई है, कई दफा इसी से हुई है, मैं बार बार इसको कहता हूँ और इसे पूछे। वो तो फिर उसने कहा कि क्यों करता हूँ, हमने पूछा कि ये जो कह रहे हैं ये सच है? कहने लगे ये मुझे टाइम नहीं देते, ये मुझे चूंकि टाइम नहीं देते तो मैं फोन पे बातें करती रहती हूँ, और ये वो, और भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन जिसका खुलासा मैं आपको बता सकती हूँ, एक औरत होने के बावजूद अगर 5% अगर उस ब्रदर की गलती थी ना, तो 95% उस औरत की गलती थी, जिसको मैं भी मानूं। और वो चूंकि थे भी मतलब पाकिस्तान से नहीं थे, दूसरा एक्सेंट थोड़ा फर्क था उनकी उर्दू का, तो मेरे हस्बैंड को इतनी उर्दू समझ कोई नहीं आती। ये बीच में रहते हैं और हम हैंड फ्री से बातें कर रहे होते हैं इधर उधर की। जब सारी बात कर करा के फोन बंद हुआ तो मुझे ये कहते हैं कि इनका असल मसला क्या था, इनका असल मसला क्या था, क्योंकि ये पूरा नहीं कैचअप कर सके लैंग्वेज की वजह से। तो मैंने उन्हें कहा कि इनका असल मसला ये है कि इनमें से एक औरत है और एक मर्द है, ये मसला है। 95% शौहर बीवी में झगड़ों की वजूहत एक दूसरे की नफ्सियात को ना समझना होता है। यकीन करें कि देखिए कि आपको चाय को पिलाता है, आपको नहीं भी वैसी पसंद आप पी लेंगे, आप सेपरेट पीते हैं, कोई मिक्स चाय पिला देगा, कोई बात नहीं, गाढ़ी पीते हैं, कोई पतली पी लेंगे ना। लेकिन कभी कुछ लोग इतने पिकी होते हैं कि वो नहीं पी पाते। आप कपड़े पहनते हैं एक खास स्टाइल के, कोई दूसरा आपको उससे 19-20 के फर्क पे देता है, आप कहते हैं किसी ने मोहब्बत से दिया है, माँ ने दिया, बहन ने दिया, पहन लेते हैं ना। पर इंसानी ताल्लुकात में ये नहीं हो सकता। हमारे कल्चर में शादी के इंतखाब के वक्त इसको नहीं देखा जाता। दो एक्सट्रीम्स है ना, या तो माँ बाप को भी बताया जाता है कि कल शादी हो रही है आना तो आ जाइएगा, और या दूसरी तरफ यह है कि आपको नहीं मिलने देंगे और आप नहीं देख सकते। बाप भी देख आते हैं, भाई भी देख आते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन लड़की लड़के का जहनी मेयार नहीं देखा जाता। ये जज्बात होते हैं, इंसानी ताल्लुकात में जज्बात बहुत अहम है। हमारे यहाँ रिश्ते करते कराते वक्त इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। तो बुनियादी वजह यह है कि औरत की नफ्सियात कुछ और है। देखिए चंद बातें हैं, एक लेक्चर भी है इस पे कि औरत क्या चाहती है और मर्द क्या चाहता है। अगर मुझे कोई कहे ना कि इसको छोटा छोटा करते जाए, जूम इन जूम आउट, बड़ा करेंगे तो हमारी 100 बातें निकल आएंगी, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। लेकिन इन सब को छोटा 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 करते जाए ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि औरत को 3 चीज़ें और मर्द को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। औरत को जो 3 चीज़ें बहुत चाहिए होती हैं ना अपने मर्द से बाय नेचर, एक तो उसको ये चाहिए होता है कि उसका शौहर उससे प्यार भी करे और प्यार का इजहार भी करे और बार बार करे। बात समझे? शौहर प्यार करे फिर उसका इजहार भी करे, तो कोई एक दफा आई लव यू कहना सही नहीं। औरत की याददाश्त इस मामले में बड़ी कमजोर है, वो भूल जाती है कि मेरा शौहर मुझे शादी से लेके अब तक 101 बार कह चुका है कि आई लव यू, वो 102वीं बार सुनना चाहती है। औरत अपनी तबीयत के एतबार से हर थोड़े दिन के बाद एक रिमाइंडर चाहती है कि मेरा शौहर मुझे आई लव यू कहे। यानी औरत को मर्द से मोहब्बत चाहिए होती है। दूसरी चीज अगर आप देखें ना, तो औरत को जो मोहब्बत मर्द से चाहिए ना, वो प्रोटेक्शन। कोई औरत आज के मुआशरे ने औरत को असल में औरत रहने नहीं दिया। वो जिसको कहते हैं कि 30 मार खां या आयरन वूमेन, या कुछ औरतें कहती हैं मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगी, और कंधे से कंधा मिलाना और कदम से कदम मिलाना, मैं भी इतना कमाऊंगी जितना आपने कमाया, मैं भी इतना चल सकती हूँ जितना आप चले, आपके पास गाड़ी है तो मैं भी गाड़ी चला सकती हूँ, अगर आपके हाथ में सेलफोन है तो मेरे भी है। यानी औरत ने अपने कंधों पे अपने से ज्यादा बोझ डाल लिया। नतीजा क्या निकला कि वो जो मर्द की तरफ से प्रोटेक्शन थी, देखिए आप सबको याद होगा हमारी माएँ, हमने खुद देखा है, हमारी नानियाँ हमेशा अपने शौहरों से जेब खर्च लेती थी। महीने के कुछ मर्द पूरे घर का खर्चा ही ला के पकड़ाते थे कि भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कुछ मर्द ऐसे होते थे वो घर की ग्रोसरी अपने हाथ में रखते थे और बीवी को कोई 100 50 2 50 हज़ार जितना भी है पॉकेट मनी देते थे कि जो तुम्हारा दिल करे। ऐसे ही था आपके भी, एक दफा गर्मियों में सिर्फ कपड़े के पैसे दे देने बच्चों के अपने कर लो, एक दफा सर्दियों में दे देने, और दूसरी बात ये है कि बाद में मर्द की जिम्मेदारी थी। आज हर जगह तो ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में तो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, बट आज वेस्ट के माहौल में पली भी बच्ची, चाहे वो इधर पाकिस्तान में चाहे बाहर, और सारी भी बाहर ऐसी नहीं और सारी पाकिस्तान में भी ऐसी नहीं, बट मैं स्टाइल ऑफ ब्रॉट अप के जिसमें एक बच्ची को आपने उतनी ही मुश्किल से पढ़ाया जितने से बच्चे को पढ़ाया, उसकी पढ़ाई पे भी उतने ही पैसे खर्च हुए जितने के बेटी के हुए। यानी आज बेटे और बेटी की एजुकेशन में फर्क नहीं रखा गया, और बेटे से तो उम्मीद हमेशा ही माशी होती है क्योंकि अरे चालू कबून अलनिसा, माँ बाप को पता होता है कि अगर आज इस पे 1 करोड़ रुपया लग रहा है तो ये डॉक्टर बन जाएगा तो फिर ये वापस भी आ जाएंगे। अब जब लड़कियों पे भी उसी लेवल पे पैसा लगता है, तो अब बास दफा माँ बाप जो है ना वो ही नहीं चाहते कि अब बच्चियां घर बैठे, वो कहते हैं हमने इतने पैसे लगाए तो क्या हम अब इसको कमाएंगे नहीं। दूसरी बात है कि जब एक औरत भी कमाने गई वेस्ट में, तो आपको पता है कि जो वेस्टर्न लड़के हमारे अपने पाकिस्तानी कल्चर की, जब उनकी शादी होती है ना तो उससे पहले उन्होंने पूरा घर लिया हुआ, अपने साल 2 साल के पे चेक दिखाने होते, फिर पाकिस्तान से किसी लड़के का वीजा लगवाया जाता है। ये एक बड़ा बिग इशू है बाहर रहते हुए, स्पेशली नॉर्वे में और यूके यूरोप में ये बहुत बिग इशू है कि एक लड़की की शादी जब पाकिस्तान में किसी लड़के से की जाती है तो 80% शादियां नहीं निभती। सीधी सी बात है, लड़की इधर नहीं रहती, लड़का उधर जा नहीं सकता, तो दूर रहने में तो जुदाइयां ही जुदाइयां। खुलासा क्या निकला कि और लड़की को मर्द बना दिया। अगर एक औरत मर्द से प्रोटेक्शन तलब करती है ना, तो यकीन करें कि वो उसमें प्रोटेक्टेड है। आज क्या कहते हैं, मैंने एक बच्ची से पूछा, मैंने कहा आप ये सब कुछ पढ़ लिख रही हैं करना चाह रही हैं ये सब कुछ क्या है, तो कहने लगी कि फिर मैं अपना कमाऊंगी, फिर मेरी अपनी गाड़ी होगी, फिर मेरा अपना सेलफोन होगा। तो मैंने कहा ये सब कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, आपके बाप से आजकल मिल रहा है, शादी होगी तो मियाँ से मिलेगा। कहती नहीं, अगर मेरी डाइवोर्स होगी फिर क्या होगा, अगर मियाँ मर गया तो क्या होगा। यानी एक औरत को इतना इनसिक्योर किया गया है कि वो इंडिपेंडेंट, और वो कहती मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी से लूँ। कई शादियां ऐसी हुई हैं जिसमें सिर्फ इसलिए भी नहीं पा रही कि मर्द क्या सोचता है, ये तो खुद इतना कमाती है मैं क्यों दूँ इसको, बट औरत इनसाइट उसके अंदर की जो चीज़ है ना उसके अंदर वो देखती है, तो उसको पता चलता है कि मुझे मर्द से लेने में खुशी होती है। आप ही तो औरतें हैं ना, जब मर्द एक जोड़ा लाए उसमें और खुद 10 जोड़े खरीदे हों कौन सा अच्छा लगता है। घर में 20 बर्तन आपने खुद खरीदे और एक बर्तन का सेट शौहर ले आए कौन सा अच्छा लगता है। तो ये प्रोटेक्शन औरत की तलब होती है, औरत की ये तलब होती है कि मर्द उसके साथ ये मामला रखे। तीसरी चीज जो बहुत ही जरूरी है एक औरत और मर्द के मामले में, यानी औरत को बार बार प्यार चाहिए, प्यार का इजहार भी चाहिए, फिर उसकी रेपिटेशन भी चाहिए, फिर दूसरी चीज़ है कि प्रोटेक्शन चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुझे ऐसे लगता है कि एक औरत वो जैसे अगर आपने अपने बच्चों को पजल्स के साथ खेलते देखा हो ना, तो उसमें कोई एक छोटा सा भी टुकड़ा मिसिंग हो तो तस्वीर अधूरी होती है। आप भी देखते हैं, घूम जाएं तो बच्चों की वो पिक्चर्स नहीं पूरी होती। औरत को हमेशा ये चाहिए होता है कि मेरे सामने मेरा मर्द मुझे कुछ भी कहे ना कहे, बट दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती ना करे। इज्जत चाहिए इस रंग की कि जिसमें वो बार बार ये सब कुछ चाह रही होती है कि उसका शौहर उसके सामने ये करे। अब आप इमेजिन की वापस आ जाएं, एक औरत को क्या चाहिए, आप अपने ऊपर लें, आपकी शादी हुई, आपको अपने शौहर से एक तो प्यार चाहिए था, फिर प्यार का इजहार भी चाहिए था और उसकी तकरार भी चाहिए। कामयाब शौहर ये हैं कि जो हर हफ्ते में एक दो बार औरत को फूल ला दें, कभी गजरे ले आएं, कभी उसके लिए कोई मैसेज कर दें। आजकल तो इजहार करना आसान ही बड़ा, आजकल तो बच्चे भी आई लव यू के साइन बना बना के फिरते हैं। वो तो और दौर था जब आई लव यू कहा और सुना जाता था तो चेहरे पे लाली आ जाती थी, अब कुछ नहीं होता। लेकिन स्टिल औरतें चाहती हैं। इसके ऑपोजिट अब मर्दों को लीजिए। एक औरत एक मर्द के घर गई। अब मैं जुमला फिर गलत बोलने लगी थी क्योंकि आजकल मैं यही देखती हूँ। पहले एक मर्द ब्याह के लाता था एक औरत को, बिलीव मी, मैं वैसे आई ना तो मेरी कई मिसालें आपको समझ नहीं आएंगी, टोन नहीं मेरी ठीक लगेगी, बट आज 90% क्या हो रहा है कि एक औरत ब्याह के लाती है एक मर्द को। फितरत का असूल है, सूरत कसस खोल के देखिए कुरान में। मूसा और उनकी बीवी शुएब नाम के एक शख्स की बेटी थी जो उनकी शादी का जिक्र है। शादी के वक्त शर्त बंधी थी लड़की के बाप की तरफ से कि तुम मेरी बेटी को 10 साल तक इधर ही रखोगे, जो कि आपने कहानी सुनी होगी, जरूरत नहीं है इस वक्त बयान करने की। 10 साल के बाद तुम जो चाहो कर लो, 8 की बात हुई थी, कहा 10 कर दोगे तो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। जो ही वो 10 साल पूरे हुए, मूसा अपनी बीवी को लेकर चल पड़े। ये फितरत का असूल था कि मर्द औरत को लेकर जाता है। ठीक है, आप हजरत मूसा हमारी जुबान में घर दामाद बने 8 साल के लिए, ससुर को जरूरत थी, उनका बेटा नहीं था, उनकी टेक केयर के लिए थी, ये हुआ। बट आप देखिए कि हजरत आयशा शादी होके नबी सल्लम के घर में आई, नबी सल्लम तो नहीं गए। हमारे कल्चर में बाज़ औक़ात ये चीज़ नहीं देखी जाती। किस तरह नहीं देखी जाती, आप देखिए कि हमारे कल्चर में एक ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना है कि ससुराल के ताल्लुकात हमारे क्यों खराब होते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी वहां जहां एजुकेटेड नहीं है लोग, दूसरों के या मामलात में दखल हद से ज्यादा देना, जिस चीज को छुपाना चाहिए उसको खोलने की कोशिशें करना, फिर हर वक्त मेरी हुक्मरानी, और सास का मसला हुक्मरानी का होता है, वो चाबियां नहीं देना चाहती, बहू का कुछ और मसले हैं। लेकिन अगर आप सारी बात के अंदर से देखें तो इस्लाम में जब एक शादी होती है ना, तो उससे पहले ही मर्द जहनी तौर पे तैयार हो चुका होता है कि अर्रिजालु कवामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, यानी मर्द औरत पर कवाम, क्योंकि एक तो जिस्मानी स्ट्रांग है, मजबूत है, वजन ज्यादा उठा सकता है, घर का फर्नीचर मूव कर सकता है, बिजली ठीक कर सकता है, पंखे लगा सकता है, मर्द की मर्दानगी है ये, और घबराता नहीं है, घर में चोर आ जाए तो मर्द परेशान नहीं होगा। अल्लाह ने फितरी तौर पर मर्द को ज्यादा किया, जो मर्द ये काम करते हैं उनकी बीवियां बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और दूसरी चीज़ वबीमा अनफकू मिन अमवालिहिम, मर्द अपनी कमाइयों में से आप देखिए 98% लगा देता है। ये बाबा जी से हम बातें कर रहे थे तो उनसे भी यही बातें हो रही थी कि जो कमाते हैं वो बाबा जी सारा वापस अपने गाँव में भेज देते हैं, क्योंकि उनके पीछे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, तो वो खा रहे हैं। तो मर्द कभी एहसान नहीं जतलाते। आप आजमा के देखें, मर्द कमाएगा ज्यादा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छे किसी दफ्तर में है, अच्छी कंपनी में, तो बीवियां दूसरों में फख्र करेंगी, मेरे शौहर वहां काम करते हैं, वो इतने ग्रेड के ऑफिसर हैं। बट किसी की बीवी अगर जरा से किसी ऊंचे से ओहदे पे होगी ना, मर्द कभी नहीं बताएगा, छुपाएगा, क्योंकि मर्द की अन्ना पे चोट पड़ती है। तो मर्द औरत से जो चीज चाहता है ना, उसमें सबसे पहली चीज, यानी दो मैंने कॉन्साइज किए हैं, जमा करें तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज अगर उधर औरत की रिक्वायरमेंट प्यार है ना, मोहब्बत है, केयर है, तो मर्द की रिक्वायरमेंट इज्जत है, रिस्पेक्ट है। आप कहना, पहले क्या कहते थे आप, वो आए हैं, नाम नहीं लेती थी औरतें, फिर नाम भी लेती थी तो अरशद साहब आए हैं, फिर साहब के साथ कभी जनाब का लफ्ज लगता था, कभी मुन्ने के अब्बा। मैं नहीं कहती कि ये गुनाह सवाब है ना, ये कोई फतवा शॉपिंग हो रही है, बट एक रिस्पेक्टफुल अंदाज था, नाम भी लेना पड़ता था किसी के सामने, तो ये कभी हो नहीं सकता कि अरशद आया। मर्द को एक औरत इज्जत दे दे, और कैसी इज्जत दे दे कि उसको अपने से कम से कम एक हाथ ऊपर रखे ना, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि ले रिजाल अलैहिन्न दर्जा, मर्दों का एक दर्जा कम से कम हो जाए। जो औरत अपने मर्द को इज्जत दे ले और उसको एहसास भी दिलाए कि तुम्हें इज्जत दी, और वो इज्जत कैसे देनी होती है, एक तो आपस में ठीक है, शौहर बीवी का रिश्ता बहुत बेतकल्लुफी का रिश्ता होता है, शादी के शुरू में बहुत बेइज्जती करने या बहुत बेतकल्लुफ होने की वजह, अगर साल दो साल में अपनी ऐसी जगह बना ली हो ना कि तन्हाई में अपने कमरे में आप उसको यार कहते हैं, दोस्त कहते हैं, मुझे तो हालांकि ये लफ्ज़ बाजारी लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, लेकिन हर एक की च्वाइस हो सकती है, लेकिन मैंने ये लफ्ज़ बोलते हुए देखा है लोगों को, आप उनको जो मर्जी के, आप उनको प्यार से जो लफ्ज़ हर एक के निक नेम्स होते होंगे ना, आप देखिए शौहर बीवी को, बीवी शौहर को कुछ भी कह के पुकार सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को आयश कहते थे, आयशा नाम था तो आयश कहते थे, कभी उसको हिर्रा कहते थे, प्यार था ना। तो अगर आप किसी का शौहर अपनी बीवी को कोई जानू कहता है, तो कोई अगर कोई कुछ भी कहता है, कोई बुरी बात नहीं है और इससे डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, बट सबसे ज्यादा एक बीवी को जो अपने मर्द की इज्जत बनानी है वो घर वालों में बनानी है, और घर वालों में भी एक तो अपने क्लोज सर्कट यानी इन लॉज में, और दूसरा अपने महके में। जो औरतें अपने शौहर की इज्जत बना लेती हैं, यकीन करें वो अपने मर्द एक कई डोरियों में बंधा चुकी होती हैं कि वो उसको नहीं छोड़ सकता, फितरी सी बात है, क्योंकि उसको पता ये इज्जत करता है, मर्द कमाता है कि नहीं कमाता, कोई गुण है कि नहीं, बाज दफा फितरी तौर पर औरत में खूबियां ज्यादा होंगी, हो सकता है किसी वजह से मर्द के पास से इतनी कमाई ना हो, या मर्द गरीब हो पीछे से, औरत को मैके से माल बहुत मिला, बड़े बाप की बेटी है, करोड़पति है, जायदाद है, या उसके पास कह लीजिए कि कोई हुनर ऐसा है कि उसके पास पैसा आता है, बट कभी मर्द को ये नहीं कहना चाहिए कि आप नखट्टू, आप बेकार, आप ऐसे, आप वैसे, ये वो, क्योंकि इससे मर्द की जो मर्दानगी है ना अंदर, उस पर चोट पड़ती है। फिर इसी तरह से देखिए घर वाले आपकी सास हैं, मतलब आप देखिए ना कि हमारा कल्चर फर्क है, अब आप मुझे नहीं पता आप में कोई सिंधी कल्चर के होंगे इधर बैठे हुए, कोई पंजाब के होंगे, कोई हो सकता है बलोचिस्तान के हों, लेकिन हर कल्चर में आप देखिए शौहर बीवी के एक दूसरे के साथ ताल्लुक की कुछ हदें होती हैं। आप सारों को एक साइड पे करके देखें, अगर एक बच्ची को ये मैसेज आप दे के भेजते ना कि देखो बेटा तुम उससे प्यार करो ना करो, देखिए औरत मर्द से प्यार करे ना करे उसकी इज्जत करे, घर बना रहेगा। और मैं ऐसी कई अक्लमंद औरतों को जानती हूँ जिन्होंने वो पानी भी चूल्हे पे रखा होता है ना पकना, तो दूसरों को कहना दूध रखा हुआ उबल रहा, अभी आए, अभी गोश्त खाए, अभी सालन बनाए, अभी ये मियाँ साहब की वो बड़ी इज्जत करवा देती हैं। कोई सोच ही नहीं सकता कि ये मियाँ साहब तो कुछ लाते ही नहीं घर में, लेकिन वो अक्लमंदी के साथ ये बात करती है। तो मर्द की इज्जत, मर्द को इज्जत चाहिए होती है। दूसरी चीज अगर आप देखें ना, जो दो चीजों को अगर सारों में जमा कर, ऑफकोर्स उसमें उसका जिस्मानी हक भी है, उसमें उसके खाने पीने का ख्याल रखना भी है, उसकी औरत के अंदर ये सारी खूबियां कि जो एक मर्द की फिजिकल नीड्स हैं, जिसमें खाना खाने से लेके घर का साफ होना सब कुछ है, लेकिन उसको जमा कर देना, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक मर्द जिस बीवी को पसंद करता है ना, जिस चीज को, वो शुक्रगुजारी है कि मेरी बीवी कदरदान हो। झगड़ों की बहुत बड़ी वजह में, यानी अगर आप पहली बात थोड़ी क्लियर हो गई है कि मर्द और औरत की सोच का फर्क सामने रखें, मर्द के मुकाबले में मर्द क्या मजा आएगा, देखिए ना अल्लाह ने फितरी तौर पे रखा है। आप जरा अपने शौहर से कहें कि जरा मैं निकल आई हूँ जल्दी में घर से, आप जरा बेडशीट बिछा दीजिएगा, जाके देखिएगा चारों कोने कभी बराबर नहीं होंगे, कोई लटक, पहले तो बिछाई नहीं होनी, उन्होंने उसी ब्लैंकेट के ऊपर ही चादर बिछा देनी है कि बेगम आपने ये तो कहा ही नहीं था कि ब्लैंकेट उठा के चादर बिछाएं, अब क्या करें वो। अच्छा घर जाके अब आप कहते हैं कि वैसी चादर बिछी होगी जैसी मैं बिछाती हूँ, तो नहीं सॉरी सिस्टर, आप औरत हैं वो मर्द हैं, वो अगर सीधा भी कर दें और उसमें रिंकलें छुपा भी दें अंदर जो भी है, शुक्र करें उन्होंने बिछा दी, मर्द होने के बावजूद वो फिर भी आपकी बात सुन के चादर बिछा गए, इतना ही बड़ा है, बात समझ गए, कभी एक्सपेक्ट ना करें इस बात में कि वो आप ही जैसी एक औरत हो। देखिए ना ये अल्लाह ने फितरत का असूल रखा है, अगर औरत के मुकाबले में औरत होती है, मर्द के मुकाबले में खुरदरा सा मर्द होता तो क्या जिंदगी होती। किसी ने कहा कि अगर दो मर्दों की शादी होती तो कैसा होता, तो उसने कहा थोड़े दिन में लड़मड़ के खत्म हो चुकी होती वो, तो ये तो एक औरत और मर्द ही साथ रहते हैं। ये अल्लाह ने फितरत का असूल रखा है, जैसे पहाड़ हैं तो साथ खाई हैं, सख्त चीज है तो उसके साथ नरम है, ठीक है। तो औरत और मर्द का फर्क ना देखने की वजह से होती है एक लड़ाई की बहुत बड़ी वजह, अगर आप देखें।